सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
उपशंति परम सौभाग्य से कल्प पुराने हम आपस में बिछड़े हुए साथी ऊपर वाले की असीम कृपा से आमने सामने मिल रहे हैं। ईश्वर बागवान की बगिया के हम सब चैतन्य फूल हैं। बाबा कहते हैं अपने से पूछो कि मेरी सुगंध कितनी दूर तक फैलती है। जो सुगंध को बढ़ाने में लगे हुए हैं वो तो हिंदी वाले फूल हैं। जो आए तो थे सुगंधदार बनने, लेकिन पहले से भी कुछ कुछ बुरी बातें संगठन में और सीख गए हैं, वो इंग्लिश वाले फूल हैं। आप जानते हैं कि कई ऐसे भी फूल होते हैं जिनको नाम तो फूल ही दिया जाता है, लेकिन उसको हाथ लगाने के बाद हाथ साबुन से धोने पड़ते हैं। बाबा भी साकार में क्लास में आते आते गार्डन में जाके फूल लेके आके बाजू में रखते थे। मैं देख रहा हूं कि कौन सा फूल किस फूल से मैच होता है, किस फूल को पाने के लिए कौन काबिल है। कई फूलों में रूप होता है रंग नहीं होता, कईयों में रूप भी होता है रंग भी होता है, सुगंध नहीं होती। किसी में रूप भी होता है रंग भी होता है सुगंध भी होती है, लेकिन आपका ये सबसे अच्छा फूल कौन सा हो सकता है? नहीं, फूल वो कोई भी हो, गुलाब का फूल तो फूलों में राजा माना जाता है, वो बात अलग है, लेकिन फूलों में अच्छा फूल किसको कहेंगे? मैं दम लगाओ बोलते जाओ, कहीं ना कहीं तो उत्तर निकल ही आएगा। कपास का फूल कौन सा फूल? बनावटी फूल, जिससे कभी सुगंध आने का सवाल ही नहीं उठता, मगर हाँ वो चलेगा ज्यादा दिन तक नहीं। लेकिन बनावटी को भी सत्यता का कलयुग के अंत तक प्रभाव है, उसको भी उसके जैसा दिखाया जाता है ना। सत्यता सत्युग से चली आती है ना, तो कलयुग तक भी अमर है वो। सत्यता अमर है, सुंदरता अमर है, कुदरत अमर है। तो सबसे अच्छा फूल उसे कहेंगे, आपको पूछने पूछने में मैं ही भूल गई, ठहरो ना थोड़ी देर याद आ जाएगा। बीज स्वरूप फूल वो फूल जो बीज रूप बन जाए, क्योंकि फूल को बीज के काबिल बनने के लिए आंधी तूफान बारिश झोंके बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और फिर भी अगर वो झाड़ पर है तो मानना पड़ेगा। कौन सा फूल? बीज स्वरूप फूल। मैं आत्मा भी बीज रूप हूं, मेरा पिता परमात्मा भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है, तो मैं ऐसा फूल बनूं कि जहां गलती से भी झड़ जाऊं ना, वहां भी फूलों के पौधे निकल आए, तब तो मैं फूल हूं। नहीं तो फिर मैं इंग्लिश वाला फूल। माताओं को समझ में आ गया इंग्लिश वाला फूल, मैं कहना नहीं चाहती। तो बाबा बागबान, हम सुगंधितदार फूलों की माला पहनने के लिए इंतजार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर मैं कितने दिन तक और सूक्ष्म वतन में रुककर तुम बच्चों की वेट करूं। एक वेट बोले तो इंतजार और दूसरा वेट बोले तो वजन। अब तक भी कर्मों का खाता बच्चों ने क्लियर नहीं किया क्या? अभी भी उड़ने की पोजीशन में नहीं आए क्या? कब तैयार होंगे? मम्मा का दूसरा नाम है हांजी, हांजी, और बाबा का दूसरा नाम है अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना? एक नामी और एकानामी, वेस्ट को बेस्ट बनाने वाला, और सबसे सुंदर नाम है बेफिकर बादशाह। हम जिस माँ बाप की संतान कहलाते हैं खुद को, आपको सुनने में बड़ा साधारण सा लगेगा, शायद कईयों के तो ये ख्याल में बात भी नहीं होंगी। बाबा ने मुरली में साकार मुरली में कहा था कि खुद को ब्रह्मा कुमार कुमारी बताना अलग बात है, खुद का परिचय मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, ये बता के परिचय देना अलग बात है, लेकिन लोगों से ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलवाना वो बहुत अलग बात है। आपको ध्यान में आ गई ना बात? लोग हमें कहें कि ब्रह्मा कुमार है, ये ओम शांति वाला जा रहा है, ऐसा नहीं, ब्रह्मा कुमार। कितनी सरल सी बात बाबा ने कह दी, लेकिन समझना पड़ेगा ना। इसका मतलब कि बाबा को मुरली सुनते समय अगर किसी को ऐसा थोड़ा सुस्ती आती थी ना, अच्छा नहीं लगता था। साकार बाबा को ऐसा लगता था कि जिस सुप्रीम टीचर को मैंने आह्वान करके इनकी सेवा में लाया है और वो वहां से यहाँ कहने के लिए आए हैं और ये डिसरिगार्ड कर रहे हैं उनका। अगर कोई उबासी लेता था तो बाबा को देख के अच्छा नहीं लगता था। आपने कई बार सुना है मुरली में कि टीचर के क्लास में आने के बाद विद्यार्थियों का क्लास में आना ये टीचर की इंसल्ट है। हमें सेंटरों पर लगता है थोड़ा सा ही तो लेट हो गए, क्यों हुए लेट? लेट के लेट हो गए? अमृत वेले का योग किया, थोड़ा सा लेटे, फिर उठ के बैठे तो लगा कि तन तंदुरुस्त नहीं है, फिर थोड़ा सा लेटे, लेट लेट के लेट हो गए, ज्यादा तो कोई कारण नहीं था। बच्चे ने माँ को पूछा, मम्मी मम्मी मेरे को 50 पैसे चाहिए। बेटा किस लिए चाहिए? मैं ना स्कूल में लेट गया था। अरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते लेट? तो एक तो बाबा हमें सुगंधीदार फूल के रूप में देखना चाहते हैं और हम आज से ये संकल्प ले रहे हैं कि हम बीज स्वरूप फूल बन के दिखाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। तो आपको मालूम है कि व्यक्तवाणी हो या अव्यक्तवाणी हो, उसमें कभी भी ये शब्द बाबा ने कबूल नहीं किया। करके दिखाएंगे, क्या करके दिखाएंगे? बीज स्वरूप फूल बन के दिखाएंगे, चाहे कितना भी सहना पड़े। मामा कितना सहेंगे, मुझे ही सहते रहना है क्या? बाबा भी कहते हैं अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर सहन करो। हम बैठे वाले लोगों में से शायद कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने दिन भर में एक बार ये मन में याद ना किया हो या 10 बार दूसरों के सामने ना बोला हो, मैंने ये सहन किया, मैंने वो सहन किया, मैंने वो सहन किया। हम जिसको मम्मा बाबा कहते हैं वो कहते हैं आपने कभी हमारे मुंह से भी सुना कि हमने कितना सहन किया? हम प्लान बना करके भी बोलते हैं, दिल से उखाड़ उखाड़ करके भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भूल से भी कभी नहीं कहा कि हमने कितना सहन किया। किसको बोलते हैं मम्मा बाबा? कैसा बनना पड़ेगा हमें उनको शोभा देने के लिए? मम्मा कभी आवाज से हंसती ही नहीं थी, कभी आवाज से बात नहीं करती थी, और हमने शायद कसम खा रखी है कि हमको बिना आवाज के हंसना ही नहीं है, हमको बिना आवाज के बोलना ही नहीं है। अगर संगम युग पर एवरेज देखने जाएं, तो ढूंढने से बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास मम्मा बाबा की इस छोटी से छोटी आज्ञा की पालना का लक्ष्य है कि मुझे कम बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है। अगर ये स्थूल और मोटी बात का ही हमारे जीवन में धारणा नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा हमें आज्ञाकारी मानेंगे और हमारे पात्र में वो डालते जाएंगे क्या चाहिए क्या चाहिए। धीरे बात नहीं कर सकते, कम बात नहीं कर सकते, शॉर्ट फॉर्म। हमारा प्रेम तो उससे तभी साबित होगा कि उन्हें जो पसंद है वो हम करें और जो पसंद नहीं है वो हम ना करें। मम्मा की जीवन कहानी में आपने भी सुना है कि मम्मा कभी जोर से चलती तक नहीं थी कि धरती माता को कहीं मेरे कारण तकलीफ ना पहुंचे। हम तो खड़े खड़े बाल्टी रखेंगे और हैंडल छोड़ देंगे, करते हैं ना ऐसा। किसको कहते हैं मम्मा बाबा के बच्चे? इसलिए बाबा हमसे चाहते हैं कि हम चाहे अपने लौकिक परिवारों में रहते हैं या हम बहनों को जो अलौकिक संसार सेवा का मिला हुआ है, इसमें हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए सूक्ष्म वतन में रह करके सेवा करनी बिना आवाज के। मैं दिल की बात बताऊं आपको, दूसरों को नहीं बोलना, मुझे आवाज से ऐसी एलर्जी हो गई है, मैं शरीर छोड़ देना चाहती हूं उस समय। या तो आप शांति से बोलो या भगवान मुझे मौत दे दे तो बेहतर। आवाज से मुझे इतनी एलर्जी हो गई है। मम्मा कभी आवाज से हंसती ही नहीं थी और हम कभी आवाज के बिना नहीं हंसते, इसीलिए तो योग नहीं लगता, इसीलिए तो अज्ञानियों की तरह अपने पास भी शिकायत है कि मन नहीं टिकता। ये लो, ये लगाओ योग, देखो लगता है, आज तो लगना ही चाहिए क्योंकि हमने ये कसम खा ली है कि हम आज के बाद कभी भी किसी के साथ आवाज से जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। जिंदगी का तमन्ना थी हम राज की, बेताब दिल को जरूरत थी आवाज की, तुमने जब मुस्कुरा कर पकारा हमें, जिंदगी को खुशी का किनारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम, आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज हाथों को दामन तुम्हारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। तो मैं आप अपने साथी भाई बहनों को, मैं ऐसे भी कई पुरुषार्थी भाई बहनों का अनुभव जानती हूँ जिन्होंने संकल्प कर लिया है कि हमें सोमवार सोमवार मौन में रहना है, तो गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए ऑफिस में जाने पर भी वो बातें करते हैं। ऐसे भी हैं बाबा के पास अनन्य रत्न, और हमें जहाँ जरूरत भी नहीं होती वहां भी हम लगे रहते हैं और फिर शिकायत। सिर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगता है शायद ये शिकायत भाइयों की होगी, सुनने में ज्यादा बहनों के पास से आता है, क्योंकि आ रे खा रे क्यों नहीं खाता, इतना सही खाया है और खाना, ये भी ले लेना वो भी ले लेना, आदतें खराब करते होंगी ना, आदतें खराब बार बार पूछने पर। और बाबा को आप याद करके कब परोसेंगे, और खाने वाला अगर याद में रह के खाना चाहता है तो ये आपकी जो ये रटन चालू है वो कब याद करना। भूखा तो कोई उठता नहीं, पेट भर के खाएगा कोई भी, तो क्या ये भी ज्यादा बात करने में शामिल नहीं होता। प्रकृति के तत्व, इन्हें भी आप योगियों को शांत और शीतल बनाना है। इसलिए सत्युग में ये सारे के सारे आपके गुलाम रहेंगे। अन्य सारी बातों का पुरुषार्थ जब संगम युग का किया हुआ ही सत्युग में साथ चलने वाला है, तो प्रकृति भी हमें त्रेता में भी उतनी सत्व प्रधान नहीं रहेगी जैसी सत्युग में होगी। इसका मतलब कि हमें तत्वों से भी उतना ही प्यार करना है। बाबा को व्यर्थ से बिल्कुल दोस्ती नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बेस्ट बनाना बड़ी बात है ना। नल लीक हो रहा है तो हो रहा है, स्नान करके चुके हैं, साबुन पानी के बर्तन है, बर्तन साबुन के पॉट में पानी पड़ा है तो पड़ा है, मैंने थोड़ी डाला है, मैंने नहीं डाला, अरे डाला मैंने भी नहीं है। इसीलिए बाबा रोज दिन के भोजन के बाद पूरे मधुबन में चक्कर लगाते थे, मेरे साजन के बसाए हुए घर में कहीं कोई नादान बच्चा नादानी के कारण कुछ नुकसान तो नहीं कर दे रहा। कर्मों की इतनी गुह गति पर क्षण क्षण उनका ध्यान था। उनका तो पहले दिन ही रिजल्ट डिक्लेयर था, बाबा क्या बनेंगे भविष्य में और मम्मा क्या बनेंगे भविष्य में, लेकिन उनके जीवन में कभी सुस्ती का नाम ही नहीं सुना। मम्मा कहेंगी मैं तो सिर्फ 2 घंटे सोती थी, उनके जीवन में अलबेलेपन का नाम भी नहीं है। और मैं पूछूंगी बहन अभी तो उठो, टाइम हो गया है, क्या काम है, बाबा पूछेगा तुम विश्व कल्याणकारी बाप की संतान हो, विश्व को मनसा योगदान बैठे से जगह दे सकते हो, तो नींद से किसी को उठाया भी जाता तो अगला पूछता है बहन जी क्या काम है, आप क्यों उठा रहे हैं हमें। और बाबा तो सोते ही नहीं थे, ऐसा बोले तो चलता है, सिर्फ शरीर को रेस्ट देते थे। कितना सब तरफ का ख्याल रखने के बाद रेखा जैसी कोई चेहरे पर चिंता की महसूस भी नहीं होती थी कभी। और मैं तो अपने अनुभव से ये कहूंगी, सिर्फ 4.5 साल बाबा के साथ रही, जो दिखता था ना वो शिव बाबा था, जो अंदर आया था ना वो ब्रह्मा बाबा था। इतना साकार बाबा ने अपने आप को शिव बाबा के जैसा बना लिया था। हमको तो खाली धीरे बोलने, कम बोलने और मीठा बोलने की आदत नहीं पड़ रही अभी तक, सालों साल हो गए बाबा को ये कहते हुए। दादी जान की अभी अभी 2-3 महीने पहले जब आई तो क्लास कराए थे, लंबा चौड़ा मत सोचो पुरुषार्थ के बारे में, थक जाओगे, इतना ही देखो कि मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं, आज्ञाकारी बस इतना ही देखो। आज्ञा बाबा की ज्यादा से ज्यादा क्या है, अमृत वेले का योग मिस मत करो बच्चे, बड़ा मजा आता है। अगर अमृत वेले उठ के बैठ के बाबा को मीठी मीठी बातें और प्यार भरी बातें करोगे ना, करके तो देखो, बड़ा मजा आता है, क्योंकि अनुभव की बात थी ना। कई होंगे ऐसे, कई जिनके पास संकल्प ही नहीं है अमृत वेले उठ के योग करने का। मैंने पहली बार उस दिन दादी चंद्रमणि जी को ज्ञान सरोवर में क्लास कराते हुए, भाइयों बहनों एक संकल्प चलता है मुझे, बताओ हाँ दादी बताओ ना, ये मुरली जब शुरू होती है ना तब कुछ कुछ दिखते हैं भाई बहने, फिर जब आधी होने पर आती है तो क्लास में आधे तक भी भाई बहने नहीं होते, लेकिन जब याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते हो रहा होता है तब सारे होते हैं क्लास में। तो क्या आप नींद करके, नींद करने के लिए वहां से यहां तक आते हो और नींद करके यहाँ का वातावरण भारी बनाते हो? नमस्ते के समय होते हो, नाश्ते पर सारे के सारे होते हो, क्यों आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाना है? देखो भाइयों बहनों, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, बाद में मत कहना दादी आपको पता था हमें क्यों नहीं बताया। अगर 4:30 बजे के बाद ब्राह्मणों में से अगर कोई बिस्तर पर रहेगा तो उसका अंतिम समय अपने सामने डिक्लेयर है कि वो कांटों की शैया पर होगा। कर लो अमृत वेले कमाई कर लो। तो आज्ञाकारियों के लिए दिनचर्या सुबह अमृत वेले से शुरू होती है, उसके बाद दिन भर में जो भी कर्म करना है, देखना है, सुनना है, सोचना है, पकाना है, खाना है, खिलाना है, किसी के भी संबंध में आना है, अलौकिक दृष्टिकोण से। हम आत्मा भाई भाई हैं, सेंटर पर कोर्स दे रहे हैं, घर के चारों कमरों में आवाज गूंज रहा है, फोन पर बात करनी है तो मुश्किल आ रहा है, अलौकिकता। आने वाले को फर्क क्या लगेगा आप में और मेरे में? और जब 24 घंटे हमें लौकिकता में ही रहने का अभ्यास हो जाता है तो ये संस्कार केंद्रों पर सेवा को आगे बढ़ाने में विघ्न रूप बनते हैं, क्योंकि जिनको दिन भर घर में बहुओं को, बेटों को, इसको उसको सिर्फ करेक्शन देने की आदत होती है, वो सेंटर पर आके क्या करेंगे? ऐसा क्या करता? ऐसा तुम्हारा करायला नको हो तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे अपने भाई बहन हैं, आपको जो भी बात ठीक नहीं लग रही है आपको हमें जरूर बतानी चाहिए, लेकिन एक बात है, मैं जिस तरह से आपके बेटे पोते दोतों को करेक्शन देने नहीं आती है ना, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी कहना है ना सिर्फ मुझे कहो, मेरे साथी बहनों को नहीं बोलना, क्योंकि उनको संभालने की जिम्मेवारी मेरी है, और वो अगर नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, तब आप किसको लाके बिठाएंगे वहां? मैं आपके घर में इंटरफेयर करने नहीं आती ना कभी भी। आपने ये चीज ऐसी क्यों रखी है, आपने वो चीज वैसी क्यों रखी है, इस बारे में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपको कभी कुछ नहीं कहती। हमको भी बाबा ने ये अलौकिक संसार दिया है और निमित्त उसी ने बनाया है। बाबा को किसी ने साकार में पत्र लिख करके भेजा कि बाबा हम सफेद बालों वाले हैं, और ये 15-20 साल की बच्चियों को अगर बैठ के क्लास कराना है तो हम क्लास में नहीं आएंगे, किसी बुजुर्ग को भेजो सेंटर चलाने के लिए। बाबा ने इतना प्यारा उत्तर दिया, बताऊं आपको, आप समझ गए क्या कहा होगा? बच्चे तुम्हें आना है या नहीं आना है वो तुम्हारी मर्जी पर है। ये 15-20 साल की लड़कियां नहीं है, बच्चियां नहीं है, ये मैं शिव की शक्तियां हैं, मैं जो शिव हूं ना ये मेरी शक्तियां हैं। क्लास तो इन्होंने कराना है, तुमने आना या नहीं आना वो तुम्हारी मर्जी है। मैं जहां सेवा में हूं वहां सेंटर के सामने से एक लाइट ऑफिस में नौकरी करने वाला भाई अक्सर गुजरा करता था, तो उसको नसीब से शॉर्ट हाइटेड बहने दिखाई पड़ती थी। ये लड़कियां क्या ज्ञान सुनाती होंगी, इनको क्या आता होगा। आखिर एक दिन उनका कोई मित्र उनको पकड़ के लाई लिया तो बोला मेरा समय ही बर्बाद हो गया, मैं तब से ही आता था तो बहुत कुछ बन जाता था। लड़कियां नहीं, मैं शिव हूं ना, ये सब मेरी शक्तियां हैं। हमें दादियों ने पढ़ाया हुआ है कि हम कोई इंचार्ज नहीं है, हम सेवाधारी है। बस आप सेवा में हमारे सहयोगी साथी हैं। आपको राय देने का बराबर अधिकार है, लेकिन जिस तरह से मालिक बन के राय दी जा रही है, तुरंत बाबा ने साथ में बालक बनने की भी श्रीमत दी हुई है। मालक सो बालक और बालक सो मालक। दादी निर्मल शांता सुना रहे थे क्लास में एक बार। मैं जैसे कि साकार बाबा की लौकिक बच्ची हूँ, मैं मतलब है ना, समझ गए ना आप। और मैं ये चाहूं कि मैं जो कहूं वो ये सब करे, तो ये होने वाला ही नहीं है। तो मैं ये सोच के दिल में नाराज क्यों हो सकती हूँ? राय देना राय दे सकते हैं, लेकिन वैसा मुझे करना ही है, ये कंपल्शन क्यों? इसलिए कि ब्रह्मा कुमारियां सेंटर चलाने वाली अनपढ़ हैं, या पढ़ी लिखी नहीं है, या वो साधारण है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है क्या? हर डॉक्टर हर बीमारी का खुद अनुभव करने के बाद इलाज करता है मरीजों का? पढ़ाई के हिसाब से करता है ना? पिछले जन्म हमने भी तो लिए हुए हैं ना, और उससे ऊपर ऊपर वाले का हमारे पास वायरलेस है, ऊपर वाले का हमारे साथ वायरलेस का कनेक्शन रहता है। आप हमसे पूछते हो, उत्तर वो आके देता है, मुंह हमारा होता है खाली। इस गलतफहमी में क्यों रह जाते हो? ठीक है, अलौकिकता। हम आपस में बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं। बस सम्मान देना और सम्मान लेना ये संगम युगी ब्राह्मणों का फर्ज है। साकार बाबा और मम्मा के उम्र में इतना अंतर रहने के बाद भी, और उस जमाने का माउंट आबू से आबू रोड का सफर कैसा होता होगा आप सोच सकते हैं। तो मम्मा को जब कहीं जाना है तो बाबा मम्मा को खुद नीचे जाके ट्रेन में बिठा के, जब ट्रेन छूटेगी है ना, तो ये सब क्या सिखाने का भाव था? सम्मान देंगे तो सम्मान ही पाएंगे ना। कितनी आसान सी बात है कि सम्मान देते रहो और जो सामान चाहिए वो आता रहेगा। हम सामान भी चाहें और सम्मान भी ना दें तो ये नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते स्नेहियों को सहयोगी मिल ही जाते हैं। अगर आप स्नेही हैं तो फिर आपको सहयोग खुद ब खुद मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मेरे पास सेवा में अगर कोई कार्यक्रम करना रहता है तो मुझे अपने साथी भाई बहनों पर यह विश्वास है कि वो खुद ब खुद सहयोग करेंगे ही करेंगे। अचानक तय हुआ है ना, तो टाइम नहीं है कि मैं आपसे पूछ के करूं या ऐसा करूं। अचानक कोई मेहमान आ रहा है और प्रोग्राम तय करना है तो मुझे मालूम है कि मुझे सहयोग मिलेगा ही मिलेगा और कार्य सफल होगा ही होगा, कमी पड़ ही नहीं सकती। अरे ऊपर वाला मुर्दे को लकड़ी कफन और आग देता है, चींटी को कण देता है, हाथी को मन देता है, योगी को दो रोटी दो कपड़ा और एक मकान नहीं दे सकता? चिंता करना ईश्वर की बेइज्जती करना है, और उसमें भी संतोषी माता का आशीर्वाद कि आप जिस बात की चिंता करेंगे ना आपको वो काम कभी होगा ही नहीं। जाओ, इसका मतलब कि आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। एक साईं बाबा को मानने वाली भक्त आत्मा माता दोपहर को 3 बजे क्लास के लिए आई तो आके बताती है कि आंगन में कपड़े सुखा के आई थी और मुझे उसको उतार करके घर के अंदर रख के आना चाहिए था, लेकिन जैसे मैं आधे रास्ते तक पहुंची तो मुझे याद आया कि अरे कपड़े तो बाहर ही रह गए। मैं 1 मिनट के लिए खड़ी हो गई कि मैं लौट के जाऊं या केंद्र पर जाऊं, तो साईं बाबा मेरे सामने आके बोले जा सेंटर पर जा। और मैं घर गई ना, एक का एक कपड़ा वहीं का वहीं था, हवा में गिर के नीचे भी नहीं गिरा और कोई लेके भी नहीं गया, घर को बाउंड्री वॉल भी नहीं था। हाँ, ऐसे ऐसे भक्तों को भी भगवान पर श्रद्धा है, लेकिन हुआ क्या है, ये साधारण वेश में बाबा बड़ी सस्ती सी चीज दिखने लगा है। बाबा 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 चिंता करते हैं हम। मैं किसी साथी को कुछ सेवा बताऊंगी, फिर 2-3 दिन हो गए फिर वो काम नहीं हुआ, तो भाई जी वो, हाँ बहन जी मैं जान गए आप मुझे किस बारे में कहने वाले, आप चिंता मत करो मैं एक दो दिन में कर दूंगा, आप पहले तो ये शब्द अपने वापिस लीजिए कि मैं चिंता ना करूं। और अगर मुझे चिंता करने की बीमारी होती तो शायद मैं ऐसी ना होती, ये आपको मानना पड़ेगा। विशेष करके क्रोधी स्वभाव वाले और चिंता करने वाले, उनका खून जलता रहता है, बनता कम है, तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं। नहीं ये सच्चाई है, आपको शायद ना भी ठीक लगे लेकिन मैंने गलत नहीं कहा ना। ये दुबले लोगों को ना गुस्सा जब आता है ना तो जाता जल्दी नहीं है, अनुभव है ना सबका, नहीं क्या? मोटे लोगों को आता भी जल्दी जाता है जल्दी, इसमें तो खून कम जलता है। एक नौकर कहता है सेठ जी मैं आपके पास नौकरी नहीं करता। तो सेठ ने पूछा क्यों? बोले आप तो बार बार गुस्सा करते रहते हो। तो बोला मेरे को गुस्सा आता है तो क्या हुआ, जाता भी जल्दी है ना फिर, है ना? इसलिए खा के पी के तंदुरुस्त रहो, सेहत अच्छी रखो, तन अच्छा रहने से मन अच्छा रहेगा और दोनों अच्छे रहने से योगी बन सकेंगे। वरना तो तन की तकलीफ जब हमारा ध्यान बार बार अपनी ओर खींचती रहती है तो अच्छे अच्छे योगियों का योग नहीं लगता, है ना? तो समझ में आ गया ना ये सिंगल और डबल का मामला। मैंने तो आपको मेरा कल डबल का मामला बताया था। रही बात, रात का क्लास पूरा हो गया और मामा निकल के आ रहे हैं रूम से और हॉल से। मैं 1 जून के दिन की बात कर रही हूँ 1965। तो माँ बाप ने भी पढ़ाया था कि बेटा हमेशा ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैंने अपने साथी भाई बहनों को भी याद दिलाया है और मैं दादियों के सामने ऐसा रहने का हर प्रयत्न करती हूँ कि वो जो भी कहें वो मैं ऐसा ऐसा करूँ। वैसे भी ऐसा करना आसान है बजाय ऐसा ऐसा करने के। ये कर्नाटक वालों को करना तो हाँ रहता है, ऐसा ऐसा करते हैं वो लोग। तो अब एक तो बाबा पूछते हैं हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, तो श्रीमत माना ऐसा हो गया, है ना? और रावण की मत माना कुछ सिर इधर और कुछ सिर इधर। तो ये करना आसान है या ये करना आसान है? छोटी छोटी बात पर ना बोल देते, छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देते। सत्यम शिवम, क्या पसंद है ईश्वर को? सत्यता। मेरे जीवन का किया हुआ पूरा पुरुषार्थ पानी में बह जाएगा अगर मैंने अपने जीवन को सत्यता से कोटिड नहीं किया तो। सत्यम शिवम सुंदरम, पहली बात सत्यता। और मैंने जो बाबा के पास देखा, बड़े से बड़ी गलती हो जाए ना आप सिर्फ सच बोल दो तो बाबा कहेगा कोई बात नहीं बच्चे, अच्छे अच्छे महारथियों से भी होती है, चिंता मत करो, पुरुषार्थ जारी रखो। बड़े से बड़ी गलती। और अगर छोटी गलती करके भी कोई झूठ बोलता था उस समय बाबा का धर्मराज का रूप मजेदार देखने जैसा रहता था। और कभी तो बाबा बोल देते थे ये बच्चे का हाथ पकड़ के मेरे कमरे से बाहर निकाल दो इसको। ईश्वर है ना धर्मराज। एक बार बाबा ने बड़ी दीदी से कहा फलाने सेंटर का फलाना विद्यार्थी इस तरह के रूप की गलती करके आया है, मैं पूछूंगा ना झूठ बोलेगा, आप जरा उससे सच्ची कराने की कोशिश करो। बोलेगा तो वो फिर भी झूठ ही है, मैं पहले के अनुभवों से जानता हूं। दीदी ने पूछा बाबा आप उसको खुद क्यों नहीं कहे? बाबा ने कहा जाओ दीदी आप बात करके आओ उससे। बहुत ध्यान से सुनना, नींद आ रही हो तो थोड़ा आंखें खोल लेना, बहुत काम की बात है। तो दीदी ने वापस आके बताया कि बाबा वो कबूल नहीं कर रहा। बाबा ने कहा दीदी अब आपको पता पड़ा कि मैंने आपको क्यों भेजा, मैंने खुद उससे बात क्यों नहीं की? ब्रह्मा भी आदि देव है ना, और उसके अंदर की प्रवेशता तो ईश्वर की प्रवेशता हो गई। इन दोनों इतनी ऊंची हस्तियों के सामने अगर वो झूठ बोलता तो उसकी सजा का हिसाब किताब, आपने पूछा है, आप भी साधारण आत्मा नहीं है, हिसाब तो उसका अभी भी बन गया है, लेकिन मेरे पास आता तो ज्यादा बनता था। इसलिए ईश्वर की सती सावित्रियां हम सेवाधारी बहनें, और हम सारे मिलकर के भाई बहनें। एक तो अभी अभी हमने संकल्प लिया था कि हम क्या करेंगे, अभी अभी मैं नीचे मैदान में एक साथी से बात कर रही थी, मेरी बिल्कुल बाजू में एक भाई बात तो कर रहा था, मगर उसका उमंग उसके अंदर समा नहीं रहा था, इतना जोर से बात कर रहा था। मुझे पलट के देखना पड़ा कि कौन है, बोल करके धत तेरे की मन से निकल गया। अच्छी बात का मतलब कि जोर से बोलना, अगर ऐसी कोई बात जो दूसरे के कान में नहीं पड़नी चाहिए थी और हमने धीरे बोली तो फायदा ही हो गया ना, उस समय झंझट नहीं फैला है ना, मैं तो तभी के तभी घर में गर्मी आ जाती थी। तो बाबा ने बड़ा सोच समझ के सबसे अच्छी फायदे वाली बात, कम बोलो मीठा बोलो धीरे बोलो, एनर्जी स्टॉक होती है। विनोबा भावे का मौन विश्व प्रसिद्ध है, हमें भी बाबा ने आज्ञा दी हुई है कि मेहरबानी करके हफ्ते में एक दिन कम से कम मौन में रहो। जो बैठे हैं और उनमें से कोई ऐसा कंपल्सरी करते हैं वो जरा दर्शन तो कराइए। सिर्फ तीन इतनी सभा में, चलिए कोई बात नहीं, ये बात थोड़ी हमारी विस्मृति में आ गई है ना, ये ऐसा करना है तो आज से फिर संकल्प ले लेते हैं, क्या बड़ी बात है, जहां से भूल गए वहां से फिर गिनती चालू कर दो, चलेगा ना। तो आज हम सब मिलकर के संकल्प ले रहे हैं कि आपको जो भी दिन सुटेबल होता है ना, आपकी अपनी व्यवस्था के अनुसार 8 दिन में एक बार हम दिन भर मौन में रहेंगे, मगर ये बात हमारे परिवार के लोगों को मालूम रहनी चाहिए। ये तो उनको लगेगा ये सूज क्यों गए, नाराज हैं क्या, बात क्यों नहीं कर रहे, तो उनकी तो शांति भंग होंगी, आपकी भी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, बाबा चाहते हैं कि हम मौन में रह करके भोजन ग्रहण करें। मैं कभी भी बात नहीं करती ऐसा नहीं है ना, लेकिन मुख्य लक्ष्य मेरा मौन में रह के बात करने का, खाना खाने का रहता है। शायद ही महीने में कोई एक आधी बार शायद अमृत वेले का योग मिस होता हो, इसलिए इस अनुभव के बारे में कम मैं 25 पेज की किताब लिखना चाहूंगी इन एडवांस इंफॉर्मेशन। बाबा को प्रीत करने वाले, मम्मा को प्रीत करने वाले, परिवार को प्रीत करने वाले बच्चों को बाबा किस कदर धोखा खाने से बचाते हैं, योग का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन एडवांस इंफॉर्मेशन लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। इसलिए चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर, ना तो मेरा कोई दोस्त और ना मेरा कोई दुश्मन, तब तो रहेगी बुद्धि की लाइन क्लियर। वरना आनंद और अनुभव ये कहता है कि जिससे प्रेम होता है उसकी याद शायद कम आएगी, लेकिन जिसके प्रति नफरत की भावना है उसकी याद बार बार और ज्यादा से ज्यादा आती है, अनुभव है ना। ये ईश्वर की हमें साकार शरीर में रहते हुए सजा है, सजा कि उसकी संतान को मैं नफरत कर रहा हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है, और मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद को संपूर्ण मान रहा हूं, वो ऐसी है या वो वैसा है। अगर इसको अच्छा कहना है तो मुझे आपको बुरा कहना है, क्यों इसको कैसे अच्छा कह सकते और आपको बुरा कहने का क्या हक है, कोई भी अच्छा नहीं है दुनिया में, ठहरो ना, कोई भी बुरा नहीं है दुनिया में, सब में दोनों बातें हैं। इवन खूंखार डाकू रहते हैं ना, उनमें भी रहम की भावना रहती है, होती है, मानेंगे आप, सब में अच्छाइयां भी हैं और सब में बुराइयां भी हैं, लेकिन किसी की कोई बुराई प्रत्यक्ष हो जाती है और किसी की थोड़ी गुप्त रह जाती है, उतनी ही फर्क है। इसलिए किसी को अच्छा भी मत कहो, किसी को बुरा भी मत कहो। झंझट में क्यों पड़ते हो? आपको महिमा करने का शौक है ना, इच्छा हो रही है ना, ऊपर वाले की करो। दो ऊपर वाले है ही नहीं जो एक को अच्छा कहोगे और एक को बुरा कहोगे, ठीक रहेगा कि नहीं है? और अगर सबके बीच में किसी एक की महिमा होती है तो दूसरों का ब्लड बॉयल होता है। महिमा करनी पड़ती है ना, करो, अकेले में करो। कभी कभी आजकल लोगों को थोड़ा मक्खन ऐसा डबल रोटी बासी क्यों नहीं रहती, मगर मक्खन है तो चलेगा ना, ऐसा रहता है ना। तो किसी को अगर ऐसी ही इच्छा है तो अलग में कर दो ना, करो ना महिमा अगर इच्छा है तो। खरीद के थोड़ी लानी है, वो मांग रहा है ना, आप दाता बन के दे दो। और जहां तक कुछ ध्यान पर भी देने का सवाल है, बाबा ने कितना मोटा सा मिसाल दिया है कि माँ जब बच्चे को पहले तैयार कर देती है और अचानक देखती है कि निकलने लगती है बाहर, तो बच्चा पूरा गंदा गंदा होके आ गया है गली में से, तो एक लगाती है जोर से। वो मार खाने के बाद बच्चे को दूर जाना था, लेकिन और ही टांगों को चिपकता जाता है, क्योंकि उसने दिल से नहीं मारा, हाथ से मारा। इसीलिए बाबा कहते दिल की बात दिल को असर करती है और दिमाग की बात दिमाग को असर करती है। बाबा को माताओं की यज्ञ सेवा बहुत पसंद है। ये भाई लोग है ना, दिमाग से कमा के लाते हैं। ये माताएं बहने होती है ना, उनकी दिल की कमाई होती है। थोड़ा सब्जी में से बचत हो गई, थोड़ा दाल में से बचत हो गई, इसलिए बाबा को दिल की कमाई बहुत पसंद है। फिर बाबा को क्या पसंद नहीं है? तो बाबा को रोना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अगर बाबा किसी को ऐसा बैठा देख लेते थे ना, क्यों विधवा हो गई हो क्या, ऐसा बैठी हो, क्यों रो रही हो, विधवा हो गई हो क्या? विधवाएं रोती है। एक रोना और एक झूठ बोलना है ना, फिर ये सुस्ती अलबेलापन, ये दो चार खास बातें बाबा को जब अच्छी नहीं लगती तो स्पष्ट दिखता था। बाबा कहते थे तुम्हें जो प्राप्ति हुई है ना, तो तुम्हारे पांव धरती पर नहीं होने चाहिए, तुम्हें मिला कौन है? छोटी मोटी लाटरी पाने वाले इतना उछलते, इतना प्रचार करते, ऐसा करते वैसा करते। मैं भक्ति में इतना रोई हूँ, 8 साल 9 साल की उम्र में, भगवान तुझे मैं खत लिखती अगर तेरा पता मालूम होता। अरे मैंने भगवान को खत लिखे हैं, भगवान ने मुझे खतों का जवाब दिया है। बाबा ने अवक्त होने से 15 दिन पहले मुझे पत्र लिखा है मेरे पास। बिमला बच्ची बिमला और महेंद्र बच्चे, तुम्हारे पास मैं अपनी ऑलराउंडर बच्ची को भेज रहा हूँ, ये लिखा है उसमें। उसमें अक्षर तो चार ही होते थे, शब्द बड़े बड़े रहते थे, और मेरे साथ उस समय जयंती बहन रहते थे, जो जानकी दादी के साथ रहते हैं जयंती बहन। और जयंती बहन ने, जयंती बच्ची ने लिखा है कि मैं इस समय आगरा में आने वाले इंग्लिश के टूरिस्ट लोगों की सेवा में बहुत आनंद महसूस कर रही हूँ, बच्ची को बाबा की ओर से मुबारक है और ऐसा ही सेवा में लगी रहना। मैं ऑलराउंडर बच्ची, मतलब ऑलराउंडर बोले तो रोना हंसना गाना पकाना खाना खिलाना और जो भी और कुछ होता होगा वो सब बाबा ने मुझे खुद बैठ के सिखाया है। और ये मेरे लिए स्वाभिमान की बात है कि मैं कलयुग के 84वें जन्म में अपने आप को आनंदमय और संपन्न स्थिति में महसूस करती हूँ। मुझे जीवन में किसी बात की कमी का एहसास है ना, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद मैं 3 साल तक दादी दीदियों के कमरे में चौथा मेरा बिस्तर रहता था। और दीदी मनमोहिनी कहा करते थे, 3 बूढ़े बच्चों की एक ही जवान माँ है, ऐसा बोलते थे दीदी। तो ये सब बड़े उछलने के और बड़े आनंद के विषय हैं। इसलिए मुझे किसी भी समय का योग ऐसा नहीं होता कि मुझे उसमें कुछ टेस्ट ना आया हो। मैं जब भी कभी बाबा को याद करती हूँ तो मुझे उसमें टेस्ट ना आया हो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बैठी तो सही लेकिन मेरे को कुछ अनुभव नहीं मिला। तो दादी दीदियों की विश्वास पात्र रहकर, उनको निर्संकल्प रखते हुए और उन्हें सेवा में मदद देते हुए, जिस समय की मधुबन में साधन भी उपलब्ध नहीं थे, मैं कमरे कमरे में जाकर के एक एक थाली कटोरी चम्मच ग्लास वो सब जमा करके लाती थी, और तब शाम को 5 बजे सर्वेंट चले गए रहते थे, रात को 7:30 बजे खाना देना रहता था, तो मैं वो बर्तन खुद मांजती थी, सेट करती थी। बर्तन मांजना मेरा शौक रहा, पीतल के बर्तन हुआ करते थे, कांसे के बर्तन होते थे, उसको नींबू घिस घिस के चमका के साफ करती थी, है ना। तो बाबा का कोई भी घर मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं बाबा के बेहद रत्नों को देख करके हमेशा बहुत आनंद पाती हूँ, और मैं ये प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मुंह से भी कभी ये गलती से ना निकले कि ये संगम युग पर ना आया होता, ना आई होती तो अच्छा था, जैसे कि मेरे वरदानी जीव से किसी को ये श्राप ना मिल जाए जिस कारण से बाबा ने दीदी को भेजा था, दीदी तुम उससे बात करके आओ। तो मैं उन साथी भाई बहनों को जिनके बीच में मैं रहती हूँ उनके बीच में 2-3 बातें मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं कभी किसी से बदला नहीं लेती। आप क्या करेंगे, मदद करेंगे ना आप भी? कोई कैसा भी रहने दो, मेरा कितना भी नुकसान होने दो, मैं कभी किसी से बदला नहीं लेती। मैं जहां तक हो सकता है बाबा के घर का कुछ भी वेस्ट ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ। उसके लिए मुझे कोई कंजूस भी कह सकता है, उसके कहने का मेरे पर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे जब ऊपर वाले को जवाब देना है तब मैं ये नहीं कह सकूंगी कि उसके कारण से मैंने ऐसा किया था, क्योंकि मम्मा बाबा का दूसरा नाम है कारण ना बताने वाले। उन्होंने कभी कारण नहीं बताया कि आज मैं इसलिए मुरली चलाने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, या मेरे नाक से पानी बह रहा है, या मेरे घुटने में दर्द है, या मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे को दांत में दर्द हो रहा था इसलिए मैं क्लास में नहीं आया। उन्होंने कभी कारण नहीं बताया, और वो हमसे भी कभी कारण सुनना नहीं चाहेंगे। हमें सच्ची भी अगर माँ बाबा को फॉलो करना है, उनके सच्चे बच्चे बनना है, तो कारण नहीं चाहिए, उसका निवारण चाहिए, और निवारण ये है कि वेस्ट नहीं होने देना है, वेस्ट को बेस्ट बनाना है। मैं पानी पी के चुकती हूँ ना, मेरे ग्लास में पानी की बूंद बाकी नहीं होती, इतना अटेंशन देती हूँ, इसलिए भंडारी और भंडारा दाता के दरबार में हमेशा भरपूर रहता है। कोई कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुझे ये संकल्प नहीं करना पड़ता कि कहीं कमी पड़ जाएगी, कहीं कम पड़ जाएगा। मैं बाबा से सुबह अमृत वेले योग में, बाबा प्लीज ये बात, ऐसा 2-3 बार, कुछ खास काम था, ऑफिस वर्क था, मैंने बाबा के सामने 2-3 बार रिपीट किया, तो बाबा ने इतने स्पष्ट शब्दों में मुझे जवाब दिया, बच्ची तुम्हारे जैसे बच्चे एक बार कहें तो सफिशियंट है, तुम्हारे जैसे बच्चे एक ही बार अर्जी डालें तो बस। अब जब मुझे कभी कोई बात दोबारा कहने का मौका आता है तो बाबा प्लीज आपने कहा है ना दोबारा नहीं कहना, इसलिए मैं दोबारा नहीं कहती, लेकिन मैं उसको जो कहती हूँ ना उसको साथ में टाइम भी देती हूँ, ये काम इतने समय में होना चाहिए, और वो होता है, वो मेरे साथी अनुभव करते हैं। मैं यहाँ अकेली नहीं बैठी, मेरे साथ रहने वाले बैठे यहाँ पर, कोई नहीं होता था ना तो मुझे अपनी बड़ाइयां मारना बहुत आसान था, मेरे साथी बैठे हैं यहाँ। मुझे इस बात का आनंद है कि मुझे मुरली सुनते समय या पढ़ते समय कभी किसी बात को कट करके नहीं पढ़ना पड़ता मुरली, ताकि भाई बहन देखेंगे कि देखा बाबा कह रहा है, हमारी खुद की ब्रह्मा कुमारी ऐसी है, मुझे बाबा की मुरली की किसी बात को जंप मार के नहीं पढ़ना पड़ता, है ना। मैं परफेक्ट बन नहीं गई, बन के दिखाऊंगी, कितनी अच्छी बात। मेरी लाइफ में 8 अक्षर हमेशा मेरे साथ साथ रहता है, वो कहानी शुरू करूंगी ना तो सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा, मुझे अगले 3 मिनट आपके और लेने हैं और एक गीत भी सुनाना है। तो मैं तो संगम युग पर कृष्णा की आत्मा के साथ इतना, है ना, अंग संग रही पली हूँ, और मैं जन्म से कट्टर कृष्ण भक्त थी, और मुझे कृष्ण के दुनिया के साक्षात्कार हुए, और बाबा के बाजू में बैठ के मैंने 3600 बार भोग लगाया, और बाबा कान में कहा करते थे आलमाइटी बाबा को मेरी भी याद दे देना। हाँ मामा मुझे चला के रात को बाहर आ रहे थे, तो 31 मई जब मैं आपको बात बता रही थी तो मम्मा ने मेरा हाथ हाथ में पकड़ा, बच्ची तुमने बाबा का बनने का संकल्प तो ले लिया है लेकिन मिर्ची के थैले खाने पड़ेंगे, खा सकोगी? मैं कुछ भी उसका नहीं जानती थी, उसका मतलब क्या रहता है, मगर हाँ जी बोलना है ना। जी मम्मा, घड़े घड़े के घड़े पानी पीना पड़ता है, पी सकोगी? जी मम्मा। बात करते करते मम्मा के हाथ में मेरा हाथ है, क्या आनंद की बात है। कभी कभी मेरा दिल रो पड़ता है कि काश ये आनंद आपको भी मिला हुआ होता। इतने में मम्मा की ब्राह्मणी बाहर निकल के आती है तो पूछती है, संतोष क्या बोल रही हो? मम्मा ने मेरे को ऐसा ऐसा पूछा था और मैंने मम्मा को ऐसा ऐसा कहा। अरे मुट्ठी माना प्रिय आत्मा, मालूम तो भी है क्या उसका मतलब क्या होता है? नहीं मालूम नहीं है, कल आना मेरे कमरे में, जब मम्मा होंगी ना बाहर ऑफिस में पत्र लिखती होंगी तब तो मेरे कमरे में आना और मैं तुमको इसका अर्थ बताऊंगी। बाबा तो मेरे आसपास में नहीं थे, अगले दिन सुबह मुरली में बाबा बोले, ईश्वर का बनना माना मिर्ची के थैले खाना है ना, और पानी पानी पीना। बाबा पाकिस्तान में भी बहनों से ये पूछ लिया करते थे और बहनें कहते थे कि हाँ हम खाएंगे। मुझे उत्तर मालूम नहीं था, मैंने दे दिया उत्तर, ऐसे ही बोल दिया। ये बोल क्या दिया उन्होंने, मुझे वरदान ही पहना दिया। एक बात दिल में कई बार आती है, जब कभी सेवा में आने वाले साथी भाई बहनों से अड़चन आती है ना, तो मुझे बुद्धि में ऐसा आता है हम जब परमार्थ की फ्री सर्विस में लगे हुए हैं, फिर ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं मेरठ की रहने वाली, मैं आबू में इतने सुखों में पली हुई, 30 सालों से बीदर में रहती हूँ, इंटीरियर प्लेस है और हमारा उसमें कुछ स्वार्थ भी नहीं है, लेकिन मैंने एक संकल्प ले लिया था यहाँ से जाने से पहले। मुझे ये कहने वाले तो संगम पर बहुत मिले कि तुम चल नहीं सकती, तुम बढ़ नहीं सकती, तुम बन नहीं सकती, तो मेरे मन में और जरा वो आता था क्यों नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी। इवन मेरे लौकिक घर में भी, इवन यज्ञ में आने के बाद भी, तुम बहुत शौकीन हो, तुम बहुत चंचल हो, तुम यज्ञ में नहीं रह सकती, तुम कुछ बन नहीं सकती। मैंने और तो कुछ नहीं किया लेकिन ऊपर वाले को मालूम था मेरा भविष्य क्या है, इसलिए उसने मेरा बुद्धियोग इतना अपने साथ जोड़ के रखा। मैंने प्रीत बुद्धि बनने का एक कमाल जरूर जिंदगी में कमाया है, प्रीत बुद्धि। मेरा उमंग गुस्सा कभी ऊपर वाला कम नहीं होने देता और मुझे निराशावादी से संबंध नहीं है, निराशावादी स्थिति से मेरा संबंध नहीं है, खुदा ना करे किसी की नजर ना लग जाए। और आप भी मेरे अपने साथी भाई बहन है, कभी जिंदगी में निराश नहीं होना, कभी नहीं होना, और प्रयत्न करना कि औरों का भी आशा का दीपक आपके सहयोग से जला रहे, क्योंकि जब बादल सूरज को ढक देते हैं तो परिस्थिति हमारे दिमाग पर पर्दा क्यों नहीं डाल सकती। आपको कुछ नहीं करना है, शांत जाकर के चादर ओढ़ के सो जाओ, ना कुछ कहो और ना कुछ सुनो। आप कुछ निर्णय लेना चाहते हैं ना, तो ऐसे स्थिर हो जाओ बाबा के सामने, जैसे पानी स्थिर होता है तो उसमें आकृति स्पष्ट दिखती है। पानी सिर्फ स्थिर रहने से आकृति नहीं दिखती, पानी स्वच्छ होना पड़ता है, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी पड़ती है, उसके लिए प्रीत बुद्धि बनना पड़ता है, वो आपको कमाल करना पड़ेगा। एक ही विकार सविकारों को लेके आता है, एक गुण दूसरे गुणों को लेके आता है ना। मैं मधुबन से मैं कब तक बात कर सकती हूँ? मैं लौकिक में मुझे कुछ अड़चने आ गई थी और मुझे जाना पड़ा, तो मुझे 103 बुखार चढ़ गया। पर तकलीफ ये हो रही थी दिल में कि सच्चे भगवान को छोड़ के झूठे भगवान के पास क्यों जाऊं, मेरे पिता का नाम भगवान। बाबा से सुबह जब मैं हाथ मिलाने गई तो बाबा ने देखा बुखार चढ़ गया इतना। तो जाने से पहले बाबा ने दीदी को कहा, मनमोहनी दीदी को, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी हमेशा साथ रहते थे, ये बच्ची में लौकिक घर के लोगों का मोह बहुत है, अब ये लौट के वापिस नहीं आएगी, जा तो रही है लौट के नहीं आएगी। मैं आई थी एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 2 साल तक नहीं गई। नहीं गई तो घर से शोर शराबा, और बड़ा भाई तो मैं पुलिस लेके आता, बोला ऐसा कैसे हो सकता है तेरा आने का मन ना हो, ये संस्था वाले भेजते नहीं होंगे तुमको। पीछे से मेरी माँ टेलीग्राम कर रही है, आना मत, हाँ यहाँ कोई काम नहीं है तेरा, तू तेरी सेवा में रहे, वो जोश में आता है तो आने दे, ओके ला थोड़ी लेगा पुलिस, आना मत उधर ही रहे। ऐसा करते करते मेरे 2 साल हो गए, मुझे घर जाना था। बाबा ने ऐसा कह दिया, बच्ची जा तो रही है अब लौट के वापिस नहीं आएगी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। थोड़े दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा दिवाली में आपके साथ आके मनाऊंगी, बच्ची जाओ तो सही पहले। और मैं बराबर दिवाली से एक दिन पहले माँ को लेके आ गई मधुबन में। बड़ी दीदी ने देखा, आ गई है ये तो, संतोष तुम तो पास हो गई। मैं समझी नहीं, गहरी भाषा होती थी उन लोगों की, हम तो छोटे थे। मैंने कहा, दीदी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया विशेष, मैं तुम पास हो गई। दीदी किस बारे में बोलो ना। नहीं तुम अभी जाओ स्नान पानी करके आओ, फिर जब शाम को बाबा से मुलाकात करने लगेंगे तब मैं बताऊंगी। मेरे में इतना मोह था, मैं उस मोह के संकल्प से ये समझती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, माँ बाप के बिना मैं नहीं रह सकती। शाम को जब मैं गई बाबा के पास, तो दीदी ने बाबा को याद दिलाया, बाबा ये पास होके आ गई। तो बाबा को क्या याद रहने लगा, 10 दिन पहले की बात थी, क्या हुई थी क्या नहीं थी। तो दीदी ने याद दिलाया कि जब ये जा रही थी ना, तब आपने कहा था कि अब ये लौट के नहीं आएगी, ये तो आ गई। बाबा बोले, बच्ची में ज्ञान का फाउंडेशन बहुत मजबूत है, अब ये कहीं नहीं जाएगी। अरे मैं, ऐसा आशीर्वाद दे दिया उसने, ऐसा कवच पहना दिया उसने, हाँ ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अगर मरूंगी ना, नहीं मैं तो मरूंगी, खैर मेरे माँ बाप तो शरीर छोड़ चुके हैं, और लौकिक लोगों से मेरा बहुत स्नेहमय रिश्ता है, अलौकिक रिश्ता बहुत स्नेहमय है, मिलते जुलते रहते हैं, तुम्हारा मोह बहुत है। तो फिर मेरी अपनी एक मेंटेलिटी है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, जिस परिवार ने हमें कुछ काबिल बना करके सेवा में दिया है, तो उनका क्यों अधिकार नहीं है हमारे ऊपर, जो हमारे कुछ नहीं लगते उन्हें हम ढूंढ ढूंढ के लाके फोन पर बुला बुला कर सेवा करते हैं, तो इनको कौन रिफ्रेश करेगा। वो जो संपर्क बना रहा, तो आज वो लोग आराम से संपन्न जीवन जी रहे हैं, वो मेरा संपर्क बने रहने से उनका जो तन मन धन यज्ञ में लगता रहा, वो कण कण भी क्यों नहीं देते रहे, लेकिन उनको ईश्वर ने टन 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 दे दिया है, ठन ठना ठन रहते हैं। इसका मतलब कि हमें अलौकिक जीवन जीना है। बाबा को क्योंकि नियम पालन न करने वाले छू नहीं सकते थे, मैं उस नादान उम्र में जहां तक समझती हूँ, बाबा का अपना जब लौकिक बेटा बहु मधुबन आते थे, तो बाबा के कमरे में बाबा की गद्दी पर वो लोग नहीं बैठ सकते थे, उनको बाबा कभी गले नहीं मिलते थे। और क्या परम सौभाग्य, शायद कोई एक दिन ऐसा होता होगा जिस दिन बाबा से गले ना मिलती होंगी, या बाबा मुझे दिन में 4 बार मुंह में गिट्टी ना खिलाते होंगे। बारे में खैर, आपको जीवन में क्या कम रहा है, आपके बाद में आने वालों को तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कितना परम सौभाग्य है आपका। इसलिए असंतुष्ट होने की सड़ी हुई गंदी बदबूदार आदत को छोड़ दिया जाए। मैं जहां तक देखती हूं, असंतुष्टता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। अगर हम संतुष्ट रहना नहीं सीखे तो हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हमने माफी मांग लेना और माफी देना नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। पत्थर की मूर्तियों से लोग उम्मीद करते हैं कि देवी देवता हमें माफ कर देंगे। हम जिंदा आपस में एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, तो किसको कहते हैं हम मम्मा बाबा के बच्चे हैं? बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, कई कई बच्चे ऐसे हैं जो मम्मा बाबा को मम्मा बाबा कहने के लायक ही नहीं है। मैं नहीं बोल रही, मैं तो साकार मुरली की पॉइंट रिपीट कर रही हूँ सिर्फ हकीकत। धन्यवाद, कुछ गलत कह दिया हो तो माफ करना। दो गीत एक के बाद एक। मेरा नाम संतोष है, मैं बीदर में रहती हूँ, बीदर कर्नाटक में है, मुझे वहां रह करके करीब 30 साल हो गए। महाराष्ट्र आंध्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर ये जगह आती है, हैदराबाद और शोलापुर के बीच में आता है, उधर से भी करीब 135 इधर से भी 135 किलोमीटर होता है। चले आइएगा सारे के सारे, और बहुत सारी बातें सुनने को और सागर के नीचे डुबकी लगाने के लिए हार्टली वेलकम। मेरे बाबा को संदेशा पहुंचाना, मेरे बाबा को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी ज्योति बढ़े हो, रे चंदा तेरी ज्योति बढ़े। दूर देश मेरे बाबा का डेरा, दूर देश मेरे बाबा का डेरा, बीच में पर्वत नदियाँ हो, बीच में पर्वत नदियाँ। तुझे पहुँचते एक पल लागे, तुझे पहुँचते एक पल लागे, मुझे पहुँचते सदियाँ हो, मुझे पहुँचते सदियाँ। मेरे दिल की दुआएं लिए जाना, मेरे दिल की दुआएं लिए जाना, रे चंदा तेरी ज्योति बढ़े हो, रे चंदा तेरी ज्योति बढ़े। तू है मेरे बाबा जैसा, तू है मेरे बाबा जैसा, तुझ सा बाबा मेरा हो, तुझ सा बाबा मेरा। आज तू ही गले से लग जाना, आज तू ही गले से लग जाना, रे चंदा तेरी ज्योति बढ़े हो, रे चंदा तेरी ज्योति बढ़े। दिल की दुनिया बसा के सावरिया, मैं ना जानू कहाँ खो गए, खो गए। साथ रहना था सारी उमरिया, दूर नजरों से क्यों हो गए, हो गए। दिल की दुनिया बसा के सावरिया, तुम न जानो कहाँ खो गए, खो गए। हंस रहा है ये जालिम जमाना, अपनी खुशियों की महफिल सजाए, हंस रहा है ये जालिम जमाना, अपनी खुशियों की महफिल सजाए। मैं अकेली मगर रो रही हूँ, तेरी यादों को दिल में बसाए, बहते बहते ये आंसू भी हारे, बहते बहते ये आंसू भी हारे, आके पलकों पे मेरी सो रहे, सो रहे। पास रहना था सारी उमरिया, दूर नजरों से क्यों हो गए, हो गए। पास रहना था सारी उमरिया, दूर नजरों से क्यों हो गए हो गए। थैंक यू।